आप देखिए कि अभी तक जितना भी सबक हुआ है, मुझे तो सब के अंदर से एक चीज़ समझ आई है, और वो है तदरीज, ग्रेजुअलिटी। पहले नज़लहू की बात है, थोड़ा थोड़ा करके उतारना, आहिस्ता आहिस्ता उतरना। फिर उसके बाद नासिख और मनसूख की बात है। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह सुबहाना तला इंसान की तबीयत के मुताबिक दीन भेजते हैं, बल्कि सूरत की आखिरी आयतें जब हम पढ़ेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। ऐसे लगता है कि जैसे अभी तक हमें किसी ने तबलीग करना सिखाया ही नहीं था, जितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुबहाना तआला ने वहाँ तذکرہ किया। तो जब भी कभी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाएं तो उसमें तदरीज रखें, ग्रेजुअलिटी रखें। थोड़ी थोड़ी चीज़ का असर ज़्यादा होता है। आप देखिए कि कोई बिल्डिंग दिनों में बन जाए तो क्या होता है, दिनों में गिर भी जाती है। एक दीवार एकदम नहीं बनती, तो ये कैसे हो सकता है कि एक शख्सियत दोबारा ढल के नहीं बन जाए। दूसरों को रियायत देनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत पीछे से पलट के आते हैं। आप इसको यूँ समझे कि कुछ कपड़े उनमें पुराने स्टेन्स होते हैं, फिर उसके बाद उसको कुछ देर लगती है धोने में, कई धुलाइयों के बाद वो फिर निखर जाते हैं। कुछ बिल्कुल हल्के से स्टेन्स होते हैं, सिर्फ हल्की सी वॉश से ही वो ठीक हो जाते हैं। तो चेक करें कि जो लोग हैं वो कहाँ से आए हैं। तो कभी भी दूसरों के बारे में फतवे ना दें, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बातें करने के साथ फिर हम अगले लोगों का उस तरफ आना जो है वो और भी मुश्किल कर देते हैं। और जस्ट जितना ज़्यादा हो उतनी ही आपकी बात का फ़ायदा होता है। और फिर इसी तरह याद रखिए कि इंसान को बदलते हुए हालात के मुताबिक अल्लाह की बात ज़्यादा समझ आती है। आपका शायद पहला सफ़र होगा, लेकिन जो लोग इस सफ़र में जुड़े हुए हैं कई सालों से, वो ख़ुद इस चीज़ की गवाहियाँ देते हैं कि जब बच्चे थे तो ये कुरान और तरह समझ आता था, फिर शादी से पहले सुना तो कुछ और ही समझ आ गया, और फिर जब शादी के बाद यही कुरान सुना तो बिल्कुल ही बदल गया। तो ये अल्लाह ताला की एक रहमत है। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फ़ी ही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा ज़िक्र है। तो ये किताब भी इंसान के साथ बड़ी होती है। जैसे आपके कपड़े, आपकी चॉइसेस, आपका सोना जागना वक्त के साथ बदल जाता है ना, इस तरह इस किताब को आप मुख्तलिफ एज में समझें। और उलमाए कराम में एक बात बड़ी मारूफ है कि 40 साल की उम्र के बाद कुरान बहुत अच्छा समझ आता है, क्योंकि उसके बाद इंसान वाकई रियलिस्टिक हो चुका होता है। फालतू जो ख्वाहिशात होती हैं और इधर उधर की चीज़ें जिसमें डिस्ट्रैक्शन होती हैं वो निकल जाती हैं जहनों से। तो जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर उसके बाद इंसान अपने आप को मुतमईन पाता है। अब यहाँ से आगे उन्हीं हालात को सामने रखिए जिसमें ये कुरान उतर रहा था। मुश्किलात का दौर था, इतनी तकलीफ़ें थी कि इस्लाम की कीमत पे लोगों को पकड़ पकड़ कर लोहे के लिबास पहना कर धूप में छोड़ दिया जाता था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मालिक था, लोहे की ज़रा पहना था, यानी आप सोचिए तपता हुआ लोहा, और उनको धूप में खड़ा कर देता था। और फिर वो अहद अहद पुकारते और उनकी चर्बी पिघलती, कभी कोयलों पर लिटा देते। ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त बहुत सारे लोग पिघल जाएं। लेकिन चूँकि पीछे तदरीज की बात थी ना, तो यहाँ अब एक रुख्सत दी गई। आम हालात में तो अल्लाह के नबी ने किसी को मशवरा नहीं दिया, पूरे मक्का के 10 साल पढ़ लें। 10 इसलिए बोले हैं कि जुल्म जो टूटे थे वो 3 साल बाद शुरू हुए थे, शुरू में जुल्म नहीं करते थे लोग, उन्होंने इस दावत को कुछ समझा ही नहीं था। लेकिन 3 साल के बाद से जो जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ, तो हिजरत मदीना तक वो एक चेन की तरह चलता रहा। कोई एक रिवायत मुझे तो नहीं मिली, मैंने दोबारा भी कोशिश की, कि जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा हो कि बिलाल छोड़ो, क्यों मुश्किल में पड़ते हो, छोड़ो क्या है तुम्हारे दिल को, अल्लाह को पता है, या कहा बीबी सुमैया कोई बात नहीं छोड़ दो, चलो खैर है ना। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम दूसरों के साथ मोहब्बत के नाम पर उनको दीन के मामले में पीछे करने लगते हैं। कोई एक रिवायत ऐसी नहीं मिलती, लेकिन एक इस्तिस्नाई वाक़या ऐसा हुआ कि जिसने तदरीज के इस मंज़र को, जिसका पिछली आयतों में जिक्र हो रहा है, और ज़्यादा हमारे सामने खोल के रखा। आइए आयत के साथ देखते हैं और फिर इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, और हम सब अपने अमल के लिए भी देखेंगे कि हम इसमें से अपने लिए क्या लेने वाले हैं, कौन सी चीज़ है जो हमें इस वक्त इसको समझने के बाद अपने अंदर लेनी है। तो फरमाया आयत नंबर 106, मन कफ़र बिल्लाहि मिन बादी ईमानी ही, और जो कोई कुफर करे अल्लाह का अपने ईमान लाने के बाद। यहाँ लिख लीजिए कब करे, जब उसको मजबूर किया जाए, जब उसकी जान के लाले पड़ जाए, उस वक़्त उसके दिल का हाल क्या हो। इल्ला सिवाय उसके, मन उक्रिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, सिवाय इसके कि कोई शख्स मजबूर कर दिया गया हो और उसका दिल ईमान पर जमा हो। یعنی کسی کی جان پہ بنی ہے، کوئی گن پوائنٹ پہ اس کو کہتا ہے کہ یا تو کفر کا کلمہ بولو یا پھر تمہیں مار دیا جائے گا، اس وقت بھی اس کا دل اسلام پہ اور ایمان پہ مطمئن ہو، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی بات نہ مانی تو ایک ایمان والا ختم ہو جائے گا، پانچ نمازیں قتل ہو جائیں گی، روزے قتل ہو جائیں گے، اللہ کا ایک پیارا ایمان والا بندہ ختم ہو جائے گا. تو اس سوچ کے ساتھ اگر وہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو پھر ایسے ہی ہوگا، لیکن شرط یہ کہ اس کا دل مطمئن ہو، تو پھر اس کو معذور سمجھا جائے گا. یہ ایک قسم کا معذور شخص ہے، ہینڈی کیپڈ ہے، اتنا مجبور ہے کہ اس وقت پھر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں. ہاں لیکن ولاکن من شرح بالکفر صدرا، مگر جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ، اللہ میں سے کسی کو ایسا نہ کرے، تو پھر ایسے لوگوں کا حال کیا؟ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ظاہر یہ آیت اور اس اگلی آیت جو ہے وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جنرل ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. اس وقت جب کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے، ناقابل برداشت قسم کی اذیتیں دے کر کفر پہ مجبور کیا جاتا تھا، تو اس وقت عمار بن یاسر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. پہلے سمجھ لیجئے کہ عمار بن یاسر کون تھے، کہ جن کی ماں سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ. یاد رکھیے کہ اس اسلام کو بچانے کے لیے سب سے پہلے جس نے جان دی ہے نا، وہ ایک مرد نہیں، عورت تھی. اور جس نے سب سے پہلے اس وحی کو اخذ کیا وہ بھی کوئی مرد نہیں، وہ عورت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں سے آپ پہلے عورت ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمارے لیے یہ سارے حالات رکھ دیے. تو یاسر باپ تھے، عمار بیٹا تھا، بی بی سمیہ ماں تھی. یہ خاندان ابو جہل کا غلام تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ غلامی میں تو پھر جو مرضی کر دیا جائے. اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ابو جہل نے سمیہ اور عمار اور ان کے خاندان کو مطلب جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہوا ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر ان کو کہا تھا کہ صبرن علی آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، انی موعدکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. بی بی سمیہ کو اتنے ظلم کے ساتھ مار دیا کہ ان کے جسم کو دو حصوں میں چیر دیا، ایک کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسرے کو دوسرے کے ساتھ، اور دونوں کو مخالف سمت پر ڈال دیا. اسی طرح باپ کو بھی مار دیا. عمار اس موقع پہ تو بچ گئے، لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ جب کفار نے ان کو پکڑا، پہلے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو مارا، پھر ان کے باپ کو مارا. اور یاد رکھیے یہ بچے تھے، اور بچوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا. تو کہا کہ دیکھو اگر جان بچانا چاہتے ہو نا تو یہ کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میری جگہ ہوتے اور ہمارے معبودوں کو اچھا برا کہہ دو، جو بھی کہہ دو. خیر جان بچانے کے لیے کفار جو ان سے کہنوانا چاہتے تھے انہوں نے کہا، اور کہنے کے بعد پھر سوئے نہیں بلکہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت حتی سببت کا و ذکرت الہتہم بخیر، اے اللہ کے رسول، مجھے نہیں چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا. یعنی اس حد تک انہوں نے انا کا اس کو مسئلہ بنایا کہ اپنی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہو اور ہمارے معبودوں کو اچھا کرو. اللہ کے نبی نے اس بات کو سنا تو کیا کیا؟ تدریج، سکون. ہمیں تو سر سے پاؤں تک آگ لگ جاتی نا. یہ جو جذباتی رویے ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے یہ ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل لاتے ہیں. کچھ لوگ نہ خوشی کی بات برداشت کرتے ہیں نہ غم کی، نہ ان کو اچھے دن راس آتے ہیں نہ ان کو برے دن راس آتے ہیں. اس عادت کو بدلیے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں. یہ چیز انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے، پھر وہ کبھی بھی خوش نہیں رہے گا. یاد رکھیے اللہ کے نبی میں تحمل تھا. نزلہ، اور پیچھے آپ نے ننسخ پڑھا، سکون سے بات سنی، پھر پوچھا کیف تجد قلبک، یہ بتا کہ تیرے دل کا حال کیا ہے، واٹ آر یو فیلنگ، تمہاری ایک فیلنگس کیا ہیں. قام مطمئنم بالایمان، عمار بولے کہ میرا دل تو ایمان پر پوری طرح مطمئن ہے. پھر آپ نے فرمائی نادو فاؤد، پھر اگر وہ دوبارہ تم پر اسی طرح ظلم کرے تو پھر یہی باتیں کہہ دینا، کیونکہ اللہ کو پتہ یہ میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی جلدی تھوڑی بہت گمان ہوتا ہے کہ ایک بندہ حالات اور وقت کی وجہ سے اور اسلام کو فائدہ دینے کے لیے بچائے. دیکھیے اگر وہ عمار بن یاسر کو اس وقت مار دیتے تو وہ جو اٹے میں نمک کے مسلمان تھے ان میں ایک اور کم ہو جاتا، تو پھر وہ عمار نہیں تھے، وہ ایک مسلم نمائندہ تھا. तो बस दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं कि इंसान अपनी ज़ात से बढ़कर उस वक़्त इस्लाम का फ़ायदा सोचता है, तो उस ऐसे वक्त में फिर अगर कोई किसी को मजबूर कर दे तो अल्लाह ने रुख्सत रखी है। याद रखिए, जीने के दो ही अंदाज़ हैं, एक है अजीमत का और एक है फ़राइज़ का। आप कह सकते हैं कि अम्मार बिन यासिर के माँ बाप ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया और यही जीते हैं। ऐसे ही लोगों की कुर्बानियों ने आज हमारे लिए दीन पर अमल आसान किया। ये लोग वो मिसालें कायम कर गए कि उसके बाद आखिर कुफर का ज़ोर टूटा। अगर सारे ही लोग रुख्सत के दर्जे पे आते, जो कि ये रुख्सत है, ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है लेकिन रुख्सत है, हमारा दीन है ही बहुत फ्लेक्सिबल, तो जब रुख्सत के दर्जे पे कुछ लोग आके, तो एक उन लोगों के लिए भी रास्ता खुल गया जो बेचारे बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इंशाल्लाह अगली आखिरी आयतों में इस मौजू का बहुत अच्छी तरह समझेंगे, इसलिए मैं अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप देखेंगे सूरत के आखिर में कि अल्लाह ताला हमें क्या सिखाता है। और मैं पूरे यकीन और शऊर से कह सकती हूँ कि उस मौजू को सुनने के बाद हमारे दिल से कम अज़ कम ये शिकवा निकल जाएगा कि मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, मेरा शौहर मेरी नहीं सुनता, मेरी दोस्तें मुझे पसंद नहीं करती, दिस एंड दैट। ऐसे लगता है कि उल्टी छुरी के साथ हम किसी को ज़िबा करना चाह रहे हैं, और वो ज़िबा तो फिर होगा नहीं, तो वो हाथ हमारे ही कटेंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ दोनों बातें बता दी। हालांकि आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं कि जिनको सुनने के बाद दिल पिघलता है। हबाब बिन अरत आग के अंगारों पर लिटाया गया, यहाँ तक कि चर्बी पिघलने से आग बुझी, मगर वो सख्ती से ईमान पर जमे रहे। हज़रत बिलाल को लोहे की ज़िरा पहनाई और चिल चलाती हुई धूप में खड़ा कर दिया, फिर तपती हुई रेत पर लिटा कर घसीटा गया, मगर वो आहद आहद कहते गए। हुबैब बिन जैद का नाम आता है, जैद बिन आसिम भी इनको कहते हैं, हुबैब बिन जैद बिन आसिम इनका नाम है। इनके जिस्म का एक एक उस मुसलमा कज़ाब के हुक्म से काटा जा रहा था, उंगली काटते फिर कहते बोलो बोलो कि मुसलमा नबी है, फिर पाँव काटा हाथ काटा, लेकिन हर जगह उनकी ज़ुबान पे ये बात था कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये वाक़या मौजूद है। अब्दुल्ला बिन खुज़ाया के बारे में इब्ने इसाकर की एक रिवायत में आता है, कैदी होकर किसी ईसाई बादशाह के पास पहुँच गए। अब क्रिश्चियन था बादशाह, मजबूर किया इनको, कहने लगा कि अगर तू अपने दीन से पलट आए, यानी ये जिस दीन का और मोहम्मद का तो नाम लेता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे फिर जा, मैं तुझे अपनी बादशाहत में शामिल करूँगा और अपनी बेटी तेरे निकाह में दे दूँगा। सोचिए ज़रा कितनी बिग ऑप्शन है, कौन किसके लिए जीता और क्या हालात करते हैं। कहने लगे कि तू अपनी बादशाहत की बात करता है, पूरी बादशाहत भी दे दे तो मैं इस सौदे को नहीं कबूल करूँगा। बादशाह के नाम पर चोट पड़ी, बादशाह ने तीर मारने के लिए इनको लटकाया, इनको ऐसे हैंग कर दिया और दूर से जैसे वो निशाना लेके तीर मारते हैं ना, तीर मारे फिर भी ना हटे। फिर कहने लगा कि पीतल की एक देग लेकर आओ, कॉपर की देग थी जिसके अंदर जलता हुआ तेल था, कॉपर खुद ही बहुत गर्म, फिर उसमें तेल। फिर इनके सामने अपने दरबारियों में से कहा कि जो किसी कैदी को लाओ, एक कैदी को लाया और उस कैदी को पकड़ के झट से उस तेल में डाला। इनकी आंखों के सामने वो चुरमुर हो गया, कभी आपने भी गोश्त ट्राई किया होगा, ये मंजर दिखा के बोला अब बोल, यदि ड्रा रहे थ्रेट कर मारना नहीं चाहता था, काफिरों को बहुत पता है कि मुसलमानों में बड़ी खैर होती है। इन्होंने कहा मैं नहीं पलटूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, फिर अगर तू नहीं पलटेगा तो तेरे साथ भी यही मामला होगा, ठीक है तैयारी करो। इनके लिए देख रखी, जब करीब थे कि उस जगह के पहुँचे तो ये रोने लगे। बादशाह तो खुशी से बगलें झाड़ने लगा, कहने को उतारो उतारो इनको, नहीं 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 इनको नहीं, समझा कि शायद अपनी जान के जाने से रो रहे हैं। तो कहने लगा अच्छा अच्छा बात मेरी मान लोगे, का बात नहीं मानूंगा, बस ये ख्याल आया इस वक्त कि मेरे जिस्म में सिर्फ एक जान है, काश मेरी 100 जानें होती और मैं जिस्म के हर उज़ की अलग जान अल्लाह के रास्ते में देता जो इस वक्त मुझे खुशी हो रही है। कभी सोचे तो सही हम किन बातों पर रोते हैं, कभी आपने और मैंने सोचा क्या, एक गज का कपड़ा सर पे लेते हुए हमें खौफ आता है कि पता नहीं हमारी जान को क्या हो जाएगा। बादशाह को समझ आ गया कि इनको मारने से फ़ायदा क्या होना है, कहने लगा अच्छा बस तुम्हें एक चीज़ पे छोड़ता हूँ, आओ और मेरे माथे पे बोसा दे दो, बस कुछ कर दो। कहा ये कोई बड़ी बात नहीं मैं देता हूँ। ये उतरे, इन्होंने बादशाह के माथे पर बोसा दिया, बादशाह करें इनको छोड़ दो। देखिए ये होता है रोब, सच्चे मोमिन का रोब। यहाँ से निकले, हज़रत उमर के पास पहुँचे, ये उनकी दौरे खिलाफत का किस्सा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह पूरी कहानी सुनी, फिर कहा खड़े हुए अपनी जगह से खुश हुए, कहने लगे हम सब का हक बनता है कि हम अब्दुल्ला के माथे का बोसा लें, और मैं पहल करता हूँ। और उन्होंने फिर उनका बोसा लिया। वो जलती हुई कड़ाही के ऊपर से उतार लिए गए, मुझे क्या मुश्किल है। आज हम कितनी जल्दी अपने ही प्यारों को, अपने ही दोस्तों को मशवरे देने लगते हैं, देखो फिर तुम घर तो ना ख़राब करो, देखो फिर ससुराल नाराज़ हो गया तो फिर तुम्हारी क्या बनेगी, और बच्चे क्या। छोटी छोटी बातों पे हमने छोटे छोटे खुदा नहीं बनाए हुए। आप दुकानों पे देखते होंगे, या इंडियन दुकानें, इतने इतने खुदा बिकते हैं इनकी दुकानों पे। और कभी आप करीब से देखें, टैग लगे होते हैं 30, 40, 50 पाउंड के। एक दफ़ा मुझे सिर्फ गुजरने का इत्तेफाक हुआ उस जगह से, तो मैं सोच में पड़ गई कौन अक्लमंद है जो ये खरीदेगा। इतना सा मिट्टी का खुदा, जो मिट्टी का खिलौना शायद 1-2 पाउंड का मिलता होगा, वो कितने 40-50 की टैग लगा हुआ था। तो वो छोटे छोटे बुत उन्होंने बनाए ना, तो हमने भी बहुत सारे बनाए हुए हैं। याद रखिएगा, जितना ईमान पुख्ता होगा और आपका किरदार मजबूत होगा, लोगों के दिल बैठने लगेंगे आपको देखकर। वो कहेंगे जाओ जाओ भैया, हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकते, गो हैड। आप एयरपोर्ट्स में, आप कहीं सिक्योरिटीज़ में, आप कहाँ भी, आप अपने ईमान पे पूरे यकीन के साथ चलें, फिर देखिए दूसरे आपका रास्ता भी नहीं रोकेंगे, शर्त ये कि आपका दिल ईमान से जुड़ा हो। अब देखिए, जब हवा चलती है ना, तो कच्चे पक्के पत्ते जो होते हैं ना, वो झड़ने लगते हैं। ये जो मुखालफतों की और आजमाइशों की हवाएं चलती हैं ना, ये असल में इस्लाम को पाक करती है इस तरह के बेकार लोगों से। और ऐसे लोग रहते भी तो क्या है, आप देख लीजिए, अल्लाह ताला ने अम्मार को मौत नहीं दी, बच के आ गए। इसी तरह एक वाक़ा सही मुस्लिम में आता है कि एक जगह थी, जब भी वहाँ से कोई गुजरता तो मुशरिकों ने वहाँ बुत रखा हुआ था, कहते थे इस बुत का चढ़ावा चढ़ाओ तो हम तुम्हें जाने देंगे। ऐसे ही कना का मसला, दो लोग वहाँ से गुजर रहे थे, कहा कि इस पे कुछ चढ़ाओ, उन्होंने कहा हम बुत को नहीं मानते, कहा कुछ भी चढ़ाओ हम जाने नहीं देंगे, तुम्हें मार देंगे। कहा क्या चढ़ाएं, कुछ नहीं है। कहा यहाँ से एक मक्खी पकड़ो, वो इस बुत पे चढ़ा दो। कहा अच्छा लाओ पकड़ो, जान छोड़ो। एक शख्स ने लिया और मक्खी चढ़ा दी, उन्होंने कहा जाओ तुम जा सकते हो, गोया के टोल खोल दिया कि अब यू कैन गो। दूसरा शख्स अटक गया, कहने लगा मैं तो मक्खी भी नहीं चढ़ाऊँगा, क्योंकि मक्खी भी मेरे रब ने पैदा की है, तो शिर्क होगा, मैं तो इसको नहीं चढ़ाऊँगा। इस बात को सुनकर उन लोगों ने उसको मार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बताया गया, और आपने उम्मत को खबर दी कि पहला शख्स मक्खी को चढ़ाने की वजह से वो जहन्नम में चला गया, और दूसरा जब वो स्टैंड लेने के लिए अल्लाह के पास पहुंच गया। देखिए, हम बहुत लफ्ज़ बोलते हैं स्टैंड लो, आप और मैं दीन का स्टैंड लेने वाले तो बने, फिर देखिए अल्लाह के फरिश्ते हमें आज भी थामते हैं। इसीलिए आगे मिसाल आ रही है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, आज वो ईमान ही नहीं जो अल्लाह की मदद को पुकारे। आज हम तो इतने गिरे पड़े दौर में, और यकीन कीजिए कि हमारे अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सेस हैं। हमने इज्जत देखी कहाँ, जब से हमारी ये पिछली 3 नस्लें तो गुलामी में पैदा हुई है ना। देखिए कि तकरीबन 400 साल हो गए, और कई नहीं मेरे लिए 10 नस्लें गुजर जाती हैं इतने वक्त में। हम सब गुलामी की पैदावार है। जब कभी तारीख लिखी जाएगी तो ये 19 और 18 सेंचुरी में अलामा इकबाल ने इस दर्द को महसूस करना शुरू किया हुआ। आप आज से 200-250 साल पहले की शख्सियत की ज़ुबान से सुने तो आपको लगेगा आज की बातें। और मैं जब सुनती तो मैं कहती अलामा इकबाल उस दौर की बातें करते हैं जिसको हम बड़ा नेक दौर कहते हैं, क्योंकि हम तो उस दौर में देखते थे औरतें इतने लंबे लंबे गरारे और बड़े निकाब और टोपी वाले बुरके पहनती थी। उस दौर में वो तड़पते थे, जलते थे, तो आज क्या है। तो चलिए मैं और आप थोड़ा सा तड़प तड़प के चले जाएंगे दुनिया से, हमारे बाद क्या होने वाला है। आज हमारा ईमान कहाँ बिकता है, और एक बात याद रखिए, आज के दौर का जो ईमान बिकता है ना, ये इस नफ्स के बुत पे बिकता है। हम अपनी फिज़िकल बींग को नहीं बदल सकते। नमाजें तो आज भी टूटी फूटी पढ़ रहे हैं मुसलमान, लेकिन अल्लाह को ऐसी नमाजों की ज़रूरत नहीं है कि जिस नमाज के बाद ना दिल में कोई हरकत ना कोई बात बने। तो ऐसे लोगों की बातें पढ़ते वक्त हम सब अपना देखें। मैं अपने आप को पूछूं, अगर अम्मार की जगह मैं होती तो मेरा अमल क्या होता, और क्या मैं आज के हालात में अम्मार जितनी मजबूर कर दी गई हूँ। हम तो माथे पे तेवरी नहीं देख सकते अपने किसी प्यारे की। शादी होती है, शौहर को हम खुदा बना लेते हैं, सास को हम जो हैं वो किसी और बुत का नाम दे देते हैं, और हम सोचते हैं कि ये ऐसी बातें और वैसी बातें। और याद रखिए कि यहाँ देखिए मिम्बादी उकरी हो, यहाँ से एक साइड इशू भी समझ लीजिए कि जब किसी को मजबूर किया जाए, किसी को मजबूर करे कोई शराब पियो, किसी को मजबूर करे जिना करे, तो फिर क्या है। तो उलमा कहते हैं कि मजबूरी में, यानी किसी के फोर्स करने पर जब कोई गुनाह करता है ना, गुनाह वो भी है, ये अलग बात है कि उसकी इंटेंसिटी फिर कम होगी, और अल्लाह ताला चाहे तो उसको माफ़ कर दे। तो फिर हम सब अपने आप को देखें, اور اس کے بارے میں محسوس کریں. مسند احمد میں روایت ہے کہ چند لوگ مرتد ہو گئے, حضرت علی نے ان کو آگ میں جلوا دیا. حضرت ابن عباس کو یہ بات پتہ چلی تو کہنے لگے میں تو انہیں کبھی آگ میں نہ جلاتا, کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اللہ کے عذاب سے تم عذاب نہ دو, ہاں بے شک میں ان کو قتل کروا دیتا, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنا دین بدل دے اس کو پھر قتل کر دو. جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو کہنے لگے ابن عباس کی ماں پر افسوس, یعنی بخاری کی روایت ہے. اس میں جو بات میرے اور آپ کے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان حکومت میں رہتے ہوئے اپنا دین بدل لے تو پھر حکمران کے پاس حق ہے کہ اس کو مار سکے. بات اصل یہ ہے. مسند احمد میں آتا ہے ابو موسیٰ الاشعری کے پاس یمن سے معاذ بن جبل تشریف لائے, دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس ہے, پوچھا یہ کیا ہے, جواب ملا کہ یہ یہودی تھا پھر مسلمان ہو گیا لیکن اب پھر یہودی ہو گیا, ہم تقریباً 2 ماہ سے اسے اسلام پر لانے کی کوشش میں ہیں. تو آپ نے فرمایا واللہ ہی میں بیٹھوں گا بھی نہیں جب تک کہ تم اس کی گردن نہ اڑا دو, کیونکہ یہی فیصلہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ جو کوئی اپنے دین سے لوٹ جائے اسے قتل کر دو, یا فرمایا کہ جو اپنے دین کو بدل دے. اب یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نا, حالات اور واقعات دیکھے جائیں گے, ہر ایک کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ دیکھا جائے گا, لیکن آپ اپنے لیے ایک عمل کی بات رکھیں, کسی کا گھر ٹوٹتا دیکھیں, کسی کو طلاق ہوتی دیکھیں, کسی کے بچے اس سے ناراض ہوتے دیکھیں, کبھی اپنی دوست کو یہ مت کہیں کہ دین چھوڑ دو. دیکھیں آج تو قرآن چھوڑنے کی باتیں ہوتی ہیں نا, تب تو دین چھوڑنے کی بات تھی, آج ہمیں یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اسلام چھوڑ کے کفر پہ آ جاؤ, لیکن حجاب چھڑواتے ہیں, لکھ لیں آج دین کے نام پہ ہم کیا چھڑواتے ہیں, حجاب چھڑواتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, قرآن کی تعلیم چھڑواتے ہیں, اور کیا چھڑواتے ہیں ہم, گیٹ اپ چھوڑ دو, شراب پی لو, شیک ہینڈ کر لو, میاں بہت بڑا مل گیا تمہیں جاب, اس کے دوستوں کے ساتھ تم بھی ذرا پارٹیوں میں محفلوں میں اس کو اپنی ادائیں دکھاؤ. تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو ان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ویلیو ختم کر دیتی ہیں. پھر آگے دیکھیے وجہ, ایسا کیوں ہوتا ہے, لوگ کیوں دین کی بات کے اوپر اتنی جلدی پیچھے ہو جاتے ہیں, سٹینڈ نہیں لے پاتے. آیت 107, ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. کیا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے؟ 108, اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی, ڈم ڈیف, نہ سن سکتے نہ بول سکتے نہ دیکھ سکتے, بلکہ وہ اولئک ہم الغافلون, یہ لوگ ہیں ہی غافل, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ابدی انجام ان کا کہ آیت 109, لا جرم انہم فی الاخرت ہم الخاسرون, اب تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے. یہاں پہ بات ختم ہوئی ہے جو شروع ہوئی تھی, ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا. ہائی لائٹ کر لیجئے لفظ استحب الحیات الدنیا کو, حب دنیا راس کل خطیہ, ایک حدیث کا خلاصہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جان ہے, سر ہے اس کا. دنیا کی محبت سے ہر برائی شروع ہوتی ہے, سٹینڈ نہیں لے پاتے, اور دنیا کی محبت حق سے منہ موڑ کر غافل بنا دیتی ہے. آج آپ سوچئے کیا لوگ غافل ہیں, دکھتی ہے غفلت کہیں؟ وجہ کیا ہے؟ استحب الحیات الدنیا. پھر اس کے بعد آپ کو آج دنیا میں جہالت دکھتی ہے؟ استحب الحیات الدنیا, یہ دنیا ذلیل کر دیتی ہے انسان کو. کبھی انسان اکیلے میں بیٹھے اور خود سے پوچھے میں اس دنیا کے پیچھے اتنا ذلیل ہو رہا ہوں. ایک شخص جس کا نام مجھے تو نہیں پتہ لیکن میرے ہسبینڈ کا میرا خیال ہے, چیلنج تو نہیں کہوں گی, وہ کہتے ہیں کہ تم بات کرو گی سب کو پتا ہوگا اس کا نام. کل پرسوں کے اخبار کی خبر ہے, میں لے نہیں آئی ورنہ میں اخبار ہی دکھاتی تو آپ سمجھ جاتے. امریکہ کا ایک بہت معروف آرٹسٹ مرا, پتہ کس کو یہ خبر پتہ ہے؟ کیا نام تھا اس کا اپنا دی؟ رابن ولیم. کیا جانتی ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بتائیں, یقیناً آپ کی انفارمیشن میرے سے اچھی ہوں گی. مجھے رات کو انہوں نے پوری پڑھائی سنائی کہانی میں پھر بھول گئی ہوں. جی کون تھا یہ؟ دا موسٹ فیمس ایکٹر اینڈ کامیڈین, اتنا فیمس ہے کہ صدر اوباما اس کا فیونرل کرنے لگا, رائٹ؟ پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ सुसाइड की, खुदकुशी की, क्यों की? डिप्रेशन. नहीं, डिप्रेशन है पूरी, उसका आर्टिकल छपा हुआ कल की अखबार ये कहीं से पकड़ के, ये देखिए ऑनलाइन पे भी सबको पता है. कहते हैं ये मोस्ट फेमस शख्स है और उसकी ज़िंदगी की सारी तस्वीरें और कहानियाँ, तो यही अफसोस कर रहे थे कि क्या दिया उसको इस दुनिया ने. दौलतमंद, अमीर और रूप बदल के जो बातें करता था और जो कुछ था, क्या मिला उसको? मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपको दुख नहीं हुआ इसके मरने का? कहते नॉट एट ऑल. मैंने कहा मुझे तो बहुत हुआ. ये अब हमारी आपस की कन्वर्सेशन है, कोई फतवा नहीं है, प्लीज़ इसको पर्सनल ना लीजिएगा. मैंने कहा मुझे तो बहुत हुआ. मैंने कहते क्यों, तुम्हें क्यों अफसोस हुआ? मैंने कहा मुझे ये अफसोस हुआ कि इसके पास कोई ना पहुंचा इस्लाम लेकर, कि इतने साल में इतना फेमस, इतना जीनियस, और उसके मुझे पढ़ के सुना रहे थे ये उसके जो रिकॉर्ड थे, ये ड्रग्स का आदी था, नशा करता था, तो इसने कोकेन के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है. शायद आप लोग मेरी सलाह कर दें कि कोकेन में गॉड का एक मैसेज है कि तुम मनी बहुत बनाते हो. यानी मकसद ये कि समझदार बंदा था, कोई बेवकूफ़ तो थोड़ी नहीं था. तो मैंने कहा कि इस तक नहीं पहुंचा, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यही बात आगे से कही कि देखो ये कैसे हो सकता है कि उसको इस्लाम नहीं मिला, उसको नहीं पहुंचा या उसको नहीं पता. और कुछ नहीं तो 9/11 के बाद तो हर बंदे को पता इस्लाम है. मैंने कहा हम कैसे ये बात कह सकते हैं? बड़ी बात है कि वो इतना नशे में हो उसको पता ही ना हो इस्लाम क्या है. लेकिन आप देखिए कि इन्होंने कहा नहीं, अल्लाह ने उसको 60 साल की उम्र थी, कितनी थी, इतनी ज़िंदगी दी, उसको खूब पता था, अकल दी थी. और अगर इवन कोई ना पहुंचे तो फितरा तो है ना, अलस्तु बिरब्बिकुम. तो याद रखिए इस तहब्बुल हयात दुनिया, दुनिया की मोहब्बत बंदे को चूर. और आपने फेल किया. मैंने अपने हस्बैंड को फिर ये रात को बताया, इनको नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी एक बहुत फेमस कॉमेडियन थे, इतने फेमस थे, हमने खुद बचपन में उनके ड्रामे देखे हुए हैं, सच्ची जो बात है. लेकिन उन्होंने भी सुसाइड की थी. तो मैंने कहा कि ये क्यों होता है कि अक्सर ये लोग सुसाइड करते हैं, इनके दिल अंदर से खाली होते हैं. हदीस में आता है कि वही ले उस शख्स के लिए जिसने दूसरों को हंसाने के लिए झूठ बोला. और अक्सर देखें ऐसे लोग ऐसे हैं. पिछले दिनों एक और भी मरा था. आप देखें दुनिया में ये हालात हैं. तो ये दुनिया अगर खुशी देती तो बताइए फिर ये लोग खुदकुशियाँ क्यों करते? इतना माल और इतनी इनके पास दौलत थी. जी अब आप फरमाइए.
सब जानते होंगे अमिताभ बच्चन, तो वो सबको पता है कि कितने रिच पर्सनालिटी हैं, पॉलिटिक्स का गए सारे. तो कहते हैं कि वो कह रहे थे कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे डिप्रेशन है. तो किसी ने उनको रिकमेंड किया कि आप कुरान पाक पढ़ो. मैंने कहा मैंने सब कुछ पढ़ा है. तो कहते हैं जब उन्होंने स्टडी करना शुरू किया तो कहते हैं मुझे इतना सुकून मिल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं वन टू ऑल इस कुरान पाक को मैं पढ़ूँगा, कि मेरे दिल को सुकून सिर्फ इस चीज़ से.
और आप देखिए कि हम आज वो कुरान पढ़ रहे हैं. मेरा तो दिल करता है सच्ची तारी हूँ मैं आपको अपने, जो आप अक्सर सोचते ना कि अक्सर दिल की क्या हालत होती है, हर एक की अपनी होती है ना. मेरा तो हर वक्त दिल कहता है कि मैं सजदे में रहूँ और ये कहूँ अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हमें कुरान दिया. और आज इस कुरान की दावत जब दूसरों तक पहुँचती है, कितने लोग हैं जो उसको इतनी भी अहमियत देते हैं जितनी कोई टी पार्टी की दावत को अहमियत देते हैं. ये सिर्फ उजर है, ये सिर्फ बहाने हैं, दूरी है, सफ़र है, मुश्किल है, गाड़ी नहीं, कैसे जाएं? वो जो हो जोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें. जिसको नहीं आना उसको नहीं आना, और जिसको जाना है उसको जाना है, उसको पहुंचना है. जिसने काम करना है वो करके रहेगा. जी नौशीन.
शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे घर में एक दरवाजा जो फ्रेम बना हुआ जिसमें आयशा यासीन लिखी हुई जो आम घरों में, फिर मेरे घर में हिंदू और ईसाई बड़ी सी फ्रेम है जिसके जो बिल्कुल सामने बैठे मुझे कहती है कि क्या तुमने लगाया? और मैंने कहा मेरा कुरान लिखा. फिर नीचे की बातें शुरू करती, फिर ऐसे करके मुझे कहती है क्या तुम्हारे लिए पॉसिबल इसको हटाओ मेरे आगे से, मेरे बिल्कुल कुछ और है इसको देख के.
देखिए हर चीज़ का असर होता है. हमारी अजान सुन के कई लोग परेशान हो जाते हैं, तो ये हकीकत है. और हम किस खेत की मूलियाँ थे कि हम इस्लाम ले आए? है आज ताकत? खुद से पूछिए, मौजू तो चल ही रहा ना, क्या मैं समझ के इस्लाम कबूल करती? अगर मुझे चॉइस के साथ मुस्लिम बनना पड़ता तो क्या मैं बनती? आर वी मुस्लिम बाय चांस और वी मुस्लिम बाय चॉइस? आज हम मुसलमानों की भी चॉइस इस्लाम नहीं है, सच्ची जो बात है. ये चूँकि गले में पड़ गया तो अब निभा रहे हैं रिश्तों की तरह, बाकी भी रिश्ते निभा रहे हैं, ये भी निभा रहे हैं. हम ये नहीं सोच सकते कि आज हम वो मुसलमान हैं जिन पर मान करके अल्लाह काफिरों को चैलेंज करें. सॉरी, वी आर नॉट दैट. अगली आयतों में देखिएगा अब अल्लाह ताला बताता है कि सिर्फ ईमान ले आने के बाद बात नहीं बनती, बल्कि असल काम तो उसके बाद शुरू होता है.
وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون